पिछली आयत क्या थी? खुला की। पहला हिस्सा क्या था? मर्द तलाक देना चाहता है। दूसरी बात क्या थी कि औरत तलाक लेना चाहती है। जब मर्द तलाक देना चाहता है उसको तलाक कहते हैं, जब औरत तलाक लेना चाहती है तो उसको खुला कहते हैं। खुला के असूल क्या है कि औरत खुला लेगी और उसके लिए कुछ ना कुछ कंपनसेशन देगी, अपना हक महर छोड़ दे। कोई मर्द ना भी हक महर छोड़े के जो तुम्हें छोड़ता हूँ उसकी तरफ से एहसान है, कुछ ले दे के करे। हजरत उमर के दौर में एक औरत थी तो उसने आके कहा कि मुझे अपने शौहर के साथ नहीं रहना, मैं उसके साथ बड़ी तंग हूँ। आप कहते हैं हजरत उमर ने क्या किया? जानवरों और मुर्गियों के डरबे में और जहाँ गंदगी और बू और स्मेल थी उसमें उसको रात के लिए बंद कर दिया कि तुम आज रात जानवरों के साथ और इधर गंद में गुजारो। सुबह उठ हुई, कहा बुलाओ उसको। औरत को बुलाया, बोला सुनाओ भी क्या, सुनाओ कैसी रात गुजरी। कहती वल्लाही मेरी जिंदगी की बेहतरीन रात थी कि मैं अपने घर में इससे भी ज्यादा तंग हूँ। कहा अब इसको इजाजत है कि इसको खुला दिलवा दो। ये हद तक क्राइटेरियन होते थे कि नापसंदीदगी की हद थी कराहत की वहां रहने की। तो अब वो बात हो गई, अब आगे चलिए मेरे साथ, आयत के साथ रहेंगे। फइन तल्लकहा, फिर अगर वो तलाक दे दे। देखिए तीसरी बार तलाक दे दी मर्द ने, पहले क्या थी? अत्तलाक मर्रतान, वो दो थी, उसमें जिक्र आ गया था कि अगर रोक ले या रख ले, लेकिन अब कहा फइन तल्लकहा, अब अगर वो शौहर तलाक दे अपनी बीवी को। पहले तो आप जरा सिर्फ लफ्ज तल्लकहा का लफ्जी तर्जमा देखें क्या बनता है, आज याद करेंगे ना, गौर से देखिएगा। तल्लका, उस एक मर्द ने तलाक दी, हा उस औरत को। अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं ना, अगर वो तलाक दे तो आधा तलफ है, हाँ अगर वो उसको तलाक दे, ठीक है, सिर्फ एक हल्की सी वजाहत है कि हाँ का भी मानी है। तीसरी बार तलाक दे दे शौहर, फला तहिल्लु लहू, अब वो औरत हलाल नहीं है। तहिल्लु की ताबदारी है कि ये मोनस है फीमेल के लिए आया। कब? मिम बादु हत्ता तन के हजोजन गई रहू, इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो। फिर उसके बाद फाइन तल्ला कहा, और वो भी इसको तलाक दे दे या फौत हो जाए, ठीक है, फिर क्या होगा? फला जुनाह अलैहिमा, तब गुना नहीं है कि किस बात पे? यतराजा, अगर पहला शौहर और ये औरत दोबारा निकाह कर लें या रजू कर लें, शर्त एक ही है, इन जन्ना, अगर वो दोनों गुमान करते हो क्या? यकीमा हुदूद अल्लाह, कि वो अल्लाह की हदें कायम करेंगे। वतिल का हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा, ये अल्लाह की हदें हैं जो वो बयान करता है। लिकौमी यालमून, उन लोगों के लिए जो समझ बूझ से काम ले। इस आयत का नाम लिखिए हलाला। ये जो लोगों ने लफ्ज हलाला बना लिया ना, उसको इस पे समझ लीजिएगा आप। ये है वो बात जो हमारे कल्चर में बड़ी मारूफ है, अगर मर्द बीवी को तीन तलाके दे देता है तो बीवी अब उस पे हलाल नहीं रहती। एक ही सूरत है पहले शौहर से दोबारा निकाह करने की, कि किसी दूसरे मर्द के साथ उसका निकाह हुआ, शादी के साथ उसके साथ रही, फिर किसी वजह से यह तलाक हुई। अब यहाँ सिर्फ तलाक का लफ्ज है, लेकिन हदीस बताती है कि मर्द फौत भी हो जाए, यानी दूसरा शोहर फौत हो गया, बीवी बेवा हो गई, तो फिर अब पहला शोहर अई यात राजा। यहाँ लफ्ज यात राजा से क्या मुराद है भला? मैं देखूं भला आपको कितना समझ आ रहा है जी। आप इसको रुजू नहीं कहेंगे, निकाह है ये नया। देखिए अब शादी होके वो लड़की दूसरे घर चली गई थी, तो अब रुजू सिर्फ ऐसे नहीं होगा, ये दूसरे निकाह के साथ रुजू होगा, जिसको आप कहते हैं कि दोबारा शादी करना। जी हलाला की टर्म लोगों ने इसी पे बनाई है, इस्लाम में हलाला का कोई तसव्वुर नहीं है। नाम निहाद हलाला क्या है कि किसी मर्द को नॉमिनेट करके उसको कुछ दे लेके, या वैसे फीस बिल नहीं लोग करते होंगे कि हमारा क्या बिगड़ता है, मर्द का तो कुछ नहीं बिगड़ता ना। शादी करवाते हैं किसी औरत से, फिर एक दो दिन का टर्म करके कहते हैं कि अब इसको तलाक दो। फिर आप जरा सोचिए, एक औरत पहले सारे टॉर्चर से खुद निकली, तीन दफा मर्द ने उसको तलाक दे के तीन दफा समझे के जिबा किया, फिर उसने उस मर्द की 3 महीने की जो इद्दत सही वो एक अजियत, ठीक है। दूसरा, फिर सोसाइटी की बातें ज्यादा कौन सुनता है, मर्द तो फिर सच्चे हो जाते हैं, सच्ची जो बात है। माएं भी अपने बेटों के रिश्ते फिर करने शुरू हो जाती हैं कि नहीं, मेरा बेटा तो बड़ा मासूम है, हो भी सकता है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अमूमन हमारी सोसाइटी मर्द की दूसरी शादी पे इतनी चूचा नहीं करती, औरत की दूसरी पे, क्या उसकी तो मंगनी छूट जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है बेचारी की। फिर आप देखिए कि वो औरत दोबारा एक मर्द की बीवी बनी, को बीवी बनना आसान है, आप खुद सोचें, आप में से मैरिड या अनमैरिड औरत कभी अपने शौहर के अलावा किसी मर्द के बारे में सोच भी सकती है कि किसी का हाथ भी टच हो? वो सारा टॉर्चर किसने सहा, जिसको पता है कि आज मुझे उस मर्द के साथ ब्याह जा रहा है जो 1 या 2 दिन के बाद फिर मेरा शौहर नहीं रहेगा। ये तो ऐसे ही जैसे किसी को कहा जाए कि तुम्हारी शादी जहाँ हो रही है, तीसरे दिन तुम्हारा मर्द फौत हो जाएगा, ठीक है? ये टॉर्चर उसके लिए, उस शादी में कोई खुशी होगी? वो तो एक, वो कहना चाहिए कि मुर्गी बनी जिसको ज़िबा करते गया। फिर उसके बाद वो मर्द उसके साथ जिस तरह का मर्जी मामला करे, जाहिर है कि उसको भी पता कि ये मेरे पास 1 या 2 दिन की चीज़ है, तो वो उसके साथ अच्छा मामला तो नहीं करेगा ना। फिर आप देखिए वो मर्द उसको तलाक देगा, फिर वो उसकी इद्दत सहेगी, कितनी चक्कियों में से कटी, फिर पहले मर्द के साथ दोबारा शादी के चक्कर। कौन कुर्बानी का बकरा बना? औरत बनी। इस्लाम इसको नहीं मानता। हदीस में आता है कि हलाला करने वाला और कराने वाला दोनों लानती हैं, मलऊन लानत, बल्कि कराए का सांड कहा गया उस शख्स को जो हलाला करवाता है। यानी दुख के साथ है, आज तो कुछ दीनदार नाम ही मारूफ हो गए हैं कि ये हलाला करने वाले मौलवी साहब है। देखिए पहले ये हुक्म गलत माना ना, जब तलाक सोच समझ के दी जो अभी हमने डिस्कस किया, तो क्या हलाले की जरूरत पड़ेगी? ये वो तलाक है जो खड़े खड़े दे देते हैं, फिर बाद में उसका पैचअप करवाने के लिए चल पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि सोचो समझो गौर व फिक्र करो, इन सारी चीज़ों को देखो, फिर पता चलेगा। अब ऐसे सूरत में दोबारा अगर अल्लाह ने लिखा हुआ है किसी सूरत में तो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। नबी सल्लम के दौर में एक औरत और मर्द का मामला पेश आया, बिल्कुल ऐसे ही हालात थे कि एक औरत की पहले किसी जगह निकाह हुआ हो तो फिर तलाक हो गई, ख़त्म हो गई बात, कोई प्री प्लान नहीं था। अल्लाह के नबी के दौर में ये हलाला की टर्मिनोलॉजी ऐसे नहीं थी जैसे आज है। फिर क्या वो किस औरत की कहीं शादी हुई? अल्लाह का करना देखिए कि जिस जगह उसकी शादी, वो मर्द ना मर्द था, यानी शादी के काबिल नहीं था, डिसेबल था फिर जिस्मानी तौर पे, कुछ अरसा उसके साथ रही, फिर उसे तलाक ले ली, छुट गई, यानी कि उधर रहना भी कैसे था, खत्म हो गया मामला। जब ये मामला खत्म हुआ तो पहले शौहर ने इसको निकाह का पैगाम भेजा कि भाई आप फारिग है तो मैं दे सकता हूँ। जब उसके निकाह का मामला आया तो बीच की बात खुली कि दूसरे शौहर से हकूक ज़ौजियत तो पूरे ही नहीं हुए, तो अल्लाह के नबी ने फिर मना कर दिया कि ये पहले शौहर के लिए अभी भी जायज नहीं हुई। कितनी पाबंदियां, मुझे ऐसे लग रहा है कि बीच में एक औरत है और अल्लाह उसके इर्द गिर्द बाड़े लगा रहा है, इस औरत का दिल ना तोड़ना, ये औरत को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वरना होता एक एक आयत में पूरा तलाक का मौजू खत्म और आप सब भी खुश होते, समझ आ गया सब कुछ, एक आयत में जो ही बीवी पे गुस्सा पड़े उसको तलाक दे के खत्म। आसान ना कोई हलाला ना खुला, ना बाएं ना बत्ता, ना मुगलजा ना रजई ना तलाक अज़ना, हम भी सुकून से घर जाएं। ये इतनी जितनी आपको मुश्किल से ये बात समझ आ रही है ना, उतना अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये औरतों के हकूक को प्रोटेक्ट किया। क्या कोई बाप किसी बेटी को प्रोटेक्ट करेगा? बापों के हाथों में लोग बच्चियों को दुख मिल जाते हैं, क्या बड़ी बात है। हमेशा अल्लाह से जुड़े, जब आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक होगा ऐसे दुख के वक्तों में भी अल्लाह ताला संभाल लेता है। अगर किसी की बहन बेटी किसी को ऐसा चोट पड़ी है, सबसे बेहतरीन उसका इस वक्त जो हल है ना, वो अल्लाह की किताब है, वो जो दिल थामती है और वो जो दिल की बहार बनती है, फिर दुनिया का कोई डिप्रेशन और कमी उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। हम ऐसे वक्तों में बच्चियों को और पढ़ाना शुरू हो जाते हैं, नहीं पढ़ लो पता नहीं आगे जाके इसके साथ होना क्या, चलो फिर दोबारा स्कूल कॉलेज जाओ, फिर वहाँ फिर कोई पसंद आ जाता, फिर वही घन चक्कर, और फिर रोते हैं कि क्या करें, बच्चियों के गम देखे नहीं जाते। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो जिसको अपनी जुबान में कहते हैं ना, आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। इसलाह की कितनी ज़रूरत है हमारे माशरती ढांचे की ना, रिश्ता करते वक्त सोचते हैं, सच्ची जो बात है, जान छुड़ाते हैं कि एक दफ़ा गई है बच्ची चलो, और चमक दमक साथ अगर दौलत और साथ बाहर का कोई पासपोर्ट भी हो तो फिर कौन पूछे कौन कहाँ से आया। और लड़कियाँ सिसकती हैं, तड़पती हैं, इतने मसले आज भी हमारे अपने मुल्कों में नहीं है बच्चियों को, जितने बाहर के मुल्कों में आने वाली बच्चियों को है। मैं तो कहती हूँ मेरी ये आवाज़ कहीं पहुँचती है ना, तो पाकिस्तान और इंडिया को तुम इतना जानती नहीं हो, कोई अपनी बच्ची बाहर के किसी लड़के को तब तक ना दे जब तक उसकी दीन और उसकी शराफत की गवाही कोई ना दे। ये जो ढीला ढाला माँ बाप ने कहा था ना, पढ़ता है नमाज, माँ बाप इस पर कुछ पूछ लेते हैं, रस्मी बच्चा नमाज पढ़ता है जी, पढ़ता है, बाद में तो चलो जुम्मे की पढ़ता है, या वो भी नहीं। मेरे क्राइटेरियन है, मेरी बात 100% गलत भी हो सकती है क्योंकि ये कुरान और हदीस नहीं, लेकिन मैंने अपने पिछले अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साल से बाहर मौका मिला, मैंने देखा है कि वेस्ट में पलने वाले लड़के जो अच्छे हैं वो बेहतरीन अच्छे हैं, वो पाकिस्तान के अच्छे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दीनदार बच्चे हैं, प्योर है, क्लीन, मासूम, बोले, उनको फिर कोई छाप नहीं पड़ी हुई किसी मसलक की या मजहब की, और वो घुटन नहीं है और वो नैरो माइंडेडनेस नहीं है, वो ब्रॉड माइंडेड है। लेकिन जो अल्लाह ना करे खराब इस माशरे में होता है, फिर वो खराब भी बहुत ज्यादा है। बहुत थोड़े होंगे जो बीच की चाल वाले होंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि हम अपनी औलादों की सही तरबियत कर सके। अब आप देखिए इसमें बार बार चलो सा इन जन ना यकीम हदूद अल्लाह, इस पे भी नोट कीजिए, खेल ना बनाओ इन चीज़ों का, बस देख लो कि खत ना टूटे। आप देखिए कि बाज दफ़ा आप सिर्फ और सिर्फ ये खेल बना लिया, पसंद नहीं आई छोड़ दिया, शक्ल अच्छी नहीं, मोटी हो तो छोड़ दिया, रंग काला है तो छोड़ दिया, इसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो छोड़ दिया, ये कोई बात है? कोई अगली परी आनी है, कोई हूर आ जाएगी, और आप इस मर्द को छोड़ के कहाँ जाएंगे? कोई गुलफाम शहजादा लाएंगे? इंसानों में कमी बेची रहेगी। बात बात पे रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए, जोड़ो भी तो सोच के जोड़ो, तोड़ो भी तो सोच के तोड़ो। तो इसलिए घर तोड़ने नहीं है, घर जोड़ने हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ बच्चा आ जाए। एक बच्चा आ जाए ना, मैं कहती हूँ ये फितरत का खामोश इशारा है कि अब खैर इस घर से ही लो, फिर अब इसके लिए रो, तहज्जुदें पढ़ो, इस मर्द की इसलाह चाहो, सास खराब है तो उसकी करो, लेकिन इस बच्चे का नसब खराब ना करो। फिर वो एक नई कहानी शुरू हो जाती है, एक तीसरे खानदान में वो बच्चा फिर उसके घर जा रहा है, हफ्ते को उधर, जुम्मे को इधर, एक दिन उधर, एक दिन उधर, वो क्या अदालतें भुगतते हैं बच्चे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, और हमारी जो बहनें, माएँ, बेटियाँ इस मसलों में, अल्लाह ताला उन सब की मदद करे, और मैं कहती हूँ उन सबको कुरान से अल्लाह जोड़ दे, फिर देखिए दिल उनके कितने खुश होते हैं। और मर्दों को भी ऑफकोर्स, मर्द भी कई मसलूम हैं, कई बीवियाँ भी बड़ी नकचढ़ी हैं, औरतें, उनका मजाज ही नहीं बनता। पाकिस्तान से बाहर से लड़के आ गए, माँ बाप के कहने पर रिश्ते हुए, वो बेगम साहबा का मिजाज ही नहीं बनता कि जी मेरा तो ब्लू पासपोर्ट और ग्रीन और येलो है, तो मैं गांव के लड़के को क्या रहूँ। ठीक है, अब अगर उसके साथ जुल्म हुए तो और बात है, लेकिन लड़कियों का भी मिजाज बड़ा है, हम फलां यूनी की पढ़ी हुई हैं, हम फलां कॉलेज के पढ़े हैं, तो हम किसको करें? ना वो खुश रख सकते हैं, ना ये खुश रह सकते हैं। इसीलिए हुक्म भी है कि कफ रखो, बराबरी होनी चाहिए। और यकीन करें अगर आप बच्चों को इधर रखते हैं ना, कोशिश करें इधर ही इनके रिश्ते करें, क्योंकि वो दो मुख्तलिफ तकाजे साथ साथ निपते नहीं, इल्ला माशाल्लाह कुछ का माहौल यहाँ रह के भी बहुत अच्छा होगा और कुछ का पाकिस्तान में रह के भी नहीं सही होगा। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यह है कि इसके ऊपर इंसान अपने आप को रहे। हजरत उमर ने हुक्म दिया कि जो हलाला करता और करवाता है दोनों को जिना की सजा दो, ये आपका फतवा मौजूद है। हजरत उस्मान के पास एक मर्द को लाया गया जिसने एक औरत से सिर्फ इसलिए शादी की थी कि इसको पहले शौहर के लिए हलाल कर दे, तो आपने उन दोनों में जुदाई करवा दी, यानी उन दोनों को कहा तुम तो पहले अलग हो फिर बाकी बात करेंगे। हसन बसरी की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मेरी कौम में से एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी हैं, इस पर अब वो दोनों शर्मिंदा हैं, मेरा इरादा है कि इस औरत से निकाह कर लूँ, इसका मेहर अदा करूँ, फिर जिस तरह शौहर अपनी बीवी के पास जाता है जाऊं और इसके बाद इसे तलाक दे दूं ताकि वो अपने शौहर के लिए हलाल हो जाए। यानी पिटी फील करते हुए ये सारे काम ये शख्स उनसे पूछ रहे हैं। तो हजरत हसन बसरी ने कहा इत्तकिल्लाह या फता वला तकूनन मिस्मार नार ली हदूदिल्लाह, ए नौजवान अल्लाह से डर और इसकी हदूद के लिए आग की खूंटी ना बन जा। यहां तक बात है। इस तरह की सारी चीज़ें इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो पीछे हमने शुरू में बात की थी कि क्रिश्चियनिटी में तलाक नहीं है और औरत नहीं ले सकती, तो कहते हैं कि इतना ज़्यादा इस चीज़ पे लीनियंसी आ चुकी थी हज़रत ईसा के मानने वाली कौम के अंदर कि हज़रत ईसा के एक कॉल मिलता है हमें किताबों में कि वो कहते थे कि जिसने अपनी बीवी को तलाक दी उसने अपनी बीवी के लिए जिना का रास्ता खोल दिया। मतलब क्या था कि जब मर्द बीवी को तलाक देता है अब मुआशरे में बिगाड़ इतना है कि उस औरत से दोबारा कोई शादी नहीं करता, तो वो औरत फिर बाज़ दफ़ा बेराहरवी में चली जाती है। तो ये सारे अकवाल मिलते हैं, इससे अल्लाह ताला हम सबको भी बेहतरीन तौर पे फ़ायदा उठाने वाला बनाए। अब आगे चलें, इसमें आगे भी बातें, बल्कि एक हदीस और सुन लीजिए इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लम के पास एक शख्स के बारे में बताया गया कि जिसने अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाकें दे दी थी, आप गुस्से की हालत में आकर खड़े हुए और फरमाया क्या अल्लाह की किताब के साथ खेल खेला जा रहा है, हालांकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। इतने में एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा ए अल्लाह के रसूल क्या मैं इसको कत्ल न कर दूँ, यानी जिसने तलाक दी इस तरह, यानी सहाबा में इतना ग्रज था कि एक वक्त में इकट्ठी तलाकें देने वाले को मारने पे आ जाते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ औरत के लिए कुछ इद्दत के अहकाम आता है। वह इज़ा तल्लक तुमनिसा, और जब तुम तलाक दे दो औरतों को। कौन? तल्लक तुम में कौन है? मुसलमान मर्द तल्लाक दे दें अपनी बीवियों को। फबलगना अजलहुन्ना, फिर जब इद्दत पूरी होने का वक्त आ जाए, अब क्या करो? फामसिकूहुन्ना, तो फिर इनको रोक लो। बिमारूफिन, अच्छे तरीके से। औसर्रिहुहुन्ना बिमारूफिन, या फिर भले तरीके से इनको रुख्सत कर दो। आ गई ना वही बात की दोहराई, इद्दत के दौरान ही ये सारा मामला होगा। हाँ, वला तुमस्सिकूहुन्ना दिरारल लितअतदू, महज सताने की खातिर इनको ना रोके रखो। बाज होते हैं ना कि सिर्फ इसलिए रोकते हैं कि कुछ कसर रह गई थी वो भी पूरी कर लें, कुछ इल्ज़ाम नहीं लगे थे जरा वो भी इस पे लगा के भेजते हैं। और बाज तो यहाँ तक जुल्म करते हैं, कहते हैं अब इसको आगे कहीं बसने भी नहीं देना, जिधर इसके रिश्ते की बात होगी वहाँ पहुँच जाएंगे कि तुम्हें क्या पता ये कैसी थी। तो अल्लाह कहते हैं कि रोको, लेकिन मजीद दुख देने के लिए ना रोको। और अगर किसी ने ऐसा किया, वह मैं यफअल ज़ालिका, और जो कोई ऐसा करेगा, फ़कद ज़लम नफ़सहू, तो बेशक वो अपने ही ऊपर जुल्म करता है, उसने अपने ही ऊपर जुल्म किया। और देखो, वला तत्तखिज़ु आयातिल्लाहि हुज़ुवा, और देखो अल्लाह की आयतों को खेल ना बनाओ। वस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किस नेमत से तुम्हें सरफराज किया। कौन सी नेमत है? वजअलनाकुम उम्मतन वसता, उम्मत वसत हो तुम, किसी और काम है तुम, शादियां निकाह करने थोड़ी आए हो सारी जिंदगी, खाने पीने नहीं आए। हमारा आज एक और भी तो मिजाज बन गया। ये मुआशरती मसाइल ही इतने ज्यादा हैं कि हम तबलीग की सोच ही नहीं पाते, दावत कब है ही नहीं, इल्मी मिजाज ही नहीं। भाई जिसकी जान को इतनी लड़ाइयां लगी हुई हैं, वो आके आपकी इस क्लास में बैठ के क्या पढ़े? सीधी सी बात है, जिसके घर में इतने मसले हैं, वो कुरान कैसे पढ़े? औरत तो वजह क्या कि इन चीज़ों में पढ़ के आज हमारा दीन कमज़ोर हो गया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो तुम करने के आए थे। मुझे यहाँ एक बात याद आती है, बहुत बुजुर्ग आलिम है, अल्लाह ताला उनको उम्र दे, मैंने उनका सुना, कहते हैं कि मेरे पास एक दोस्त आया, ये आप सबको भी फ़ायदा देगी बात और शायद किसी की इससे इस्लाह हो जाए। कहते हैं कि मेरे पास एक शख्स आया तो कहने लगा कि शेख साहब मेरी बेटी का बड़ा मसला है, शादी की है, मिजाज नहीं मिलता लड़के का, दिस एंड दैट, तो मैं सोच रहा हूँ कि बेटी का फैसला ले लूँ, आप क्या कहते हैं? अच्छा, कहते हैं कि वो शख्स जो थे ना पूछने वाले, वो दावत और तबलीग से मुंसलिक थे, करते थे और इस तरह की बात थी, दीन का काम करते थे। ये आलिम कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मेरे दोस्त, अगर तो तुम बेटी का बाप बन के जीना चाहते हो ना, तो फिर तो शौक से इस मसले में कूदो कि बेटी कैसी है, मियाँ का क्या है, उसका गुस्सा तेज है, ये नहीं तो छोटी छोटी बातें हैं, फिर तो तुम बस इधर से निकालोगे, पहले इधर तलाक के मसले में उलझोगे। फिर उसके पास जाहिर है कि जब बेटी तेरे घर आ जाएगी तो तुझे फिक्र लगेगी, क्या मैंने कहीं और इसका रिश्ता ढूंढना है, तो फिर तुम इसके रिश्ते की कोशिशों में शुरू हो जाओगे। फिर जब उधर शादी होगी तो फिर फिक्र ये होगा कि अब इधर निपटती है नहीं, तो ये बताओ कि तुम अल्लाह का काम कैसे करोगे? अगर तूने बेटी का बाप बनना है ना, तो फिर तो तू कर इसमें बारीकियां, और अगर तू अल्लाह के दीन का दाई बनता है ना, और इस लड़के में कोई शरई कबाहत अगर नहीं है, सिर्फ सोच का मिजाज का फर्क है ना, तो बेटी को कह के बेटी इधर ही रह, और तू भी अल्लाह के कामों में लग, तो मैं भी लगता हूँ। किसी को ये एडवाइस समझ आई? ये मिजाज बनाए, वो जाने दो, नहीं शोहर अच्छा कोई बात नहीं जन्नत में अच्छा हो जाएगा, नहीं बीवी अच्छी कोई बात नहीं मिल जाएगी, बिजी कर ले अपने आप को, हराम हलाल ना टूटे, हद ना टूटे। लेकिन ये सोच का मिजाज, ये बोलते नहीं, ये बात करते हैं, ये बोलते बहुत हैं, ये खाते नहीं, ये खाते, ये कोई बात नहीं करने वाली, इतनी छोटी छोटी बात, इनसे मिजाज नहीं मिलता, इनसे मेरी सोच नहीं मिलती, ये मेरे इंटेलेक्चुअल की नहीं है, ये मेरे से पार्टी में नहीं जाती। जो खुद के लिए जीते हैं ना, वो हर वक्त अपनी जात में, आप यकीन करें अभी तो आप मसरूफ कोई नहीं हुए, मेरी नज़र में आप सब फारिगुल बाल हैं अभी तक, ये हफ्ते में 4 दिन आके पढ़ना कोई मसरूफियत नहीं होती, 3 दिन आप खाली हैं और बड़े लंबे दिन रात हैं, बुरा लगता है तो लगे आपको, लेकिन अभी मेरी नज़र में आप आधे मसरूफ हुए हैं, कोई मसरूफियत नहीं है, अल्लाह ने आपको बल्कि एक शुगल दे दिया है, अच्छा भला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक भी करे। आप खुद को मसरूफ कर लें, यकीन करें आपको इसकी फिक्र ही नहीं कि आपकी बेटी ससुराल में इस वक्त हलीम सही पका भी रही है कि नहीं पका रही। बेटा जो पकता है पका के बैठ जाओ, और अगर आप खुदा ना खास्ता फारिग होंगी ना, तो बेटा आज क्या, अच्छा देखो चूल्हा ध्यान से जलाना, अच्छा देखो वो डोंगा दे में डाल रही हो, आप यहाँ बैठी अपनी बेटी के घर में ना दखल अंदाजियां दे रही होंगी, और फिक्र क्या आना है कि उसको ये ना हो जाए वो ना हो जाए। फारिग लोगों का काम है, अच्छी माएँ अच्छे माँ बाप अपनी बेटियों को उनके हाल पे डाल देते हैं। बहुत सारे आज सोशल जो प्रॉब्लम्स है ना, उसमें वजह इन्वॉल्वमेंट, लड़की वालों की भी लड़के वालों की भी। अब लड़के की माँ भी तो फिर वही कहती है ना, इतना पढ़ाया लिखाया तो अब हम ये पैसे ना पूरे करें। एक माँ थी, दोस्त कहा मैंने इसको डॉक्टर बनाया, वो सारे पैसे लड़की के माँ बाप से ही तो लेने, क्योंकि उनकी बेटी नहीं ऐश करनी है। अब आप वो देखे, वो तो हर चीज पे सोचेगी कि कड़े कितने भारी हैं, यूं यूं देखती हैं सासे, डिजाइन अच्छा पूला पूला अंदर कोई खाली है। भाई आप ऐसी सासे ले आए हैं तो फिर कुछ और करिए, ये एक मिजाज है जी। सोना महंगा हो गया तो अच्छी बात है ना, ना रहे सोना ना ना महंगा हो ना चलाए कोई। लेकिन आप देखिए कि आपको मैं ये जो हल्के रंग में ला रही हूँ ना, इसलिए कि आप जरा ये तल्लाक के स्ट्रेस में से निकले, लेकिन आप महसूस करें ये माशरती मसले हैं, और इसकी वजह क्या है, अल्लाह की आयतों का खेल बना हुआ है, तमाशे बने हुए हैं। शादी बच्चे की जब कर रहे होते हैं तो अल्लाह की आयतें खेल बनती, कार्ड पे लिखते हैं आप, अब तो लिखते भी नहीं होंगे क्या, निकाह हो मिन सुन्नति, निकाह मेरी सुन्नत है, फमान रागिबान सुन्नति फलैसा मिन्नी। एक और हदीस में आता है कि जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा वो मुझसे ही नहीं, और सारी शादी ए टू जी सारी के सारी अल्लाह के दीन की मजाक है। देखिए यहाँ इस आयत पे तलाक की बात है ना, जब निकाह खेल बन जाता है ना तो तलाक भी खेल बन जाएगी। कभी आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि किसी जगह निकाह शादी है, बहुत सारी रस्में हैं, टू मच टू डू, चलो छोड़ो मौलवी साहब वाला स्लॉट निकाल देते हैं, निकाह नहीं पढ़ाते, बस ऐसे ही लड़की लड़के को रुख्सत करते हैं। कैन एनी वन थिंक, मेरा लिए तसव्वुर में भी नहीं ला सकता। बड़ा ही लिबरल से लिबरल छोड़ के बहुत ही डाइल्यूटेड माइंड का बाप भी अपनी बेटी को किसी के साथ ऐसे नहीं भेजेगा, और बोल के कबूल दो चार जुमले, इतने निकाह इतने हक मेहर के भी बस कबूल है ले जाओ। वो एक स्लॉट नहीं निकाल सकते शादी में से, और उसके साथ कितने डालने में, क्या अल्लाह की आयतों के साथ खेल नहीं है। आप पूछिए जो अपनी शादियों में इस तरह की खुराफात डालते होने के, क्या ख्याल है ये मौलवी साहब वाले स्लॉट की क्या जरूरत है, इतनी बड़े होटल में शादी है, मौलवी साहब आएंगे भी तो क्या शलवार कमीज ही पहन के आएंगे बेचारे, तो क्या ख्याल है आप निकाह को छोड़ देते हैं। इसलिए अब कई लोग पहले ही करवा लेते हैं कि मौलवी साहब ना ही आए हमारे शादी में, आ गए तो उतनी देर के लिए वो लोग ना यूं पकड़ के टिश्यू पेपर सर पे रखते हैं। मैंने खुद देखा है शादियों में, आगे जल्दी देना, और बास तो वो टेबलों के बीच में सेंटर टेबल नहीं होते वो देना, वो मैंने तो दुपट्टा सारा पिनों के साथ जोड़ा हुआ है, तो वो फिर उसके बाद जब निकाह खत्म होता है ना, फिर वो ऐसे जरा अदा से सर हिलाती हूँ, वो टिश्यू खुद ही नीचे गिर जाता है। आप देख ली किसी शादी में निकाह के बाद फ्लोर पे बहुत सारे टिश्यू पड़े होंगे। ला तत्तखिज़ायातिल्लाही हुज़ूरा वस्कुरु नेमतल्लाह, सोचो क्या नेमत है इस्लाम, अगर हम मुसलमान ना होते कहीं आग के गिर फेरे ले रहे होते तो क्या बनता, और अगले सालों में आप मेरी जुबान कभी ना पूरी हो लोग ये भी करेंगे, ये खेल नहीं है। शादी पूरी में खेल तमाशे ही होते हैं, और अगर फन में जब बाकी जो हमने चीजें अपने हमसायों से ली तो हम एक फन के चले मेहंदी की रात ही कर लेंगे, चलो भाई अच्छा खूबसूरत लगता है, लड़का लड़की के गले में फूलों का हार डाले वो उसके डाले, फिर उनकी गिराउ से बांधो उसको बांधो, वो उनका तो खुदा है वो उसके गिर्द घूमते हैं हम तो नहीं घूमते। और ऐसा वाक्य मुझे सुनाया तो सच्चे कितना के झूठ है कि बच्चा शादी हॉल में माँ से पूछ रहा था अम्मी शादी कब होगी, अम्मी शादी कब होगी, तो उसने कहा ये शादी ही तो हो रही है और शादी क्या होती है, तो कहा नहीं अभी दूल्हा दुल्हन ने आके गिर फेरे तो लिए ही नहीं। ला तत्तखिज़ू आयातिल्लाह की हुज़ूरा, अल्लाह नेमत को याद करो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी नेमत दी है, और वत्तकुल्लाह वालमु अन्नल्लाह बिकुल्ली शयइन अलीम, अल्लाह ताला खूब जानता है। अब आप देखिए कि इस आयत के अंदर पहली चीज़ वइज़ा तल्लक्तुमुन्निसा फबलग़ना अजलहुन्ना, इद्दत को पहुंचे, ये बलगना के लफ्ज़ की क्या ज़रूरत थी, ये बता रहे हैं ना कि तलाक का प्रोसेस इद्दत के दौरान चलता रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ देखिए इस आयत में, रोक लो उनको अच्छे तरीके से या रुख्सत कर दो अच्छे तरीके से, दोनों की तरफ इशारा आ गया, पीछे बात हो गई, इस पर दोबारा बात की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तीसरी बात देखिए, ला तुम सिकू हुन्ना दिरार लिता तदु, तुम ना रोको इनको ज़रर और तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, कोई मनाही बात नहीं है, जो कोई ऐसा करेगा वो अल्लाह की नज़रों में खुद ही गुनहगार है। असल जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, अब तलाक का आज का टॉपिक पूरा हो गया, आयतें पूरी हो गई, आपको क्या मिला, बस करो नेमत अल्लाह अलैकुम, याद करो अल्लाह की वो नेमत जो तुम पर है। वमा उन्ज़ल अलैकुम, जो तुम पर उसने नाजिल की, मिनल किताब, किधर से की है? आज मैं और आप किताब पढ़ रहे हैं ना। जिंदगी आसान लग रही है आपको अल्लाह के हुक्म वाली ही मुश्किल? लोग क्या कहते हैं? मुश्किल है। वल हिक्म, अभी तो हिकमत आनी है आपको, और हिकमत आती है हदीस से। जितना आप नबी सल्लम की जिंदगी पढ़ते जाएंगे आपके अंदर हिकमतें आती जाएंगी। या इज़ुकुम बिही, वो इसकी नसीहत करता है तुमको। अब कोई कान धरे के ना धरे, लेकिन अल्लाह ने बता दिया। और यही नेमत अल्लाह ताला ने सूरत मायदा आयत 3 में कहा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम पर अपना दीन पूरा कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी की और तुम्हारे लिए लफ्ज इस्लाम को पसंद कर लिया। तो अब ये आज हमारी मर्जी है कि हम अपने इस्लाम के साथ कितनी बैसाखियां लगाते हैं। एक खुशी का मौका नहीं सिर्फ इस्लाम पे पूरा होता, तो गमों पे कहाँ हम कहेंगे कि इस्लाम पूरा हुआ। वत्तकुल्लाह, देखिए फिर अल्लाह का तकवा, डर, वालमु, जान लो, अन अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह ताला खूब जानता है, सुनता है, उसको सब पता है। किस तरीके से ये सारी बातें बता के अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी। अब कोई क्विक क्वेश्चन अगर आपके पास है तो पूछ सकते हैं। जी आपकी, जी, कोर्ट मैरिज के ला निकाह इल्ला बि वली, सही बुखारी की रिवायत है कि निकाह नहीं होता मगर वली के साथ। तो जो लड़की औरत अपना निकाह खुद कर लेती है वली को पीछे करके, तो वो निकाह शरीयत में निकाह नहीं है। कुछ भी हो, ये मौजू यहाँ नहीं है वैसे, ये वहाँ आएगा आगे जाके, 5वें पारे की पहले रुकू में ही लेसन आ जाएगा। ये कहती हैं कि आज का सबक बहुत सेंसिटिव है, इसकी तफसीर घर जाकर अकेले बैठकर पूरे गौर से सुनूंगी इंशाल्लाह। आज दिन इस्लाम पर दिलो जान से प्यार आ रहा है, आज फील हो रहा है कि वाकई अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। कितनी आसानियाँ हैं इंसान के लिए, आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि काश मेरी इंग्लिश फ्लुएंट होती और मैं गैर मज़हब वालों को ये सारी बातें बता सकती। आज फिर अपने आप को सुरखरू महसूस करती हूँ कि मैंने अपनी बेटी की दुनियावी तालीम को वक्ती तौर पर रोक कर ये तालीम दी है, यानी कोर्स करवा रही हूँ। इंशाल्लाह ये मेरे लिए सदका जारिया बनेगा और ये तालीम उसकी पूरी ज़िंदगी और आगे की ज़िंदगी में काम आएगी। फिर अहद करती हूँ कि इस कोर्स के बाद अब अपनी दूसरी बेटी के साथ आऊँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला इस्तकामत दे, इसलिए कि बहुत ज़रूरत है ना। मुझे यही सोच रहती थी कि जो नमाज की पाबंदी में खलल पड़ता था हैज़ की वजह से, पाक होने के बाद रूटीन सेट होने में थोड़ी मुश्किल पेश आती थी, लेकिन आज के सबक से मैंने अहद किया है कि नमाज के औकात के दौरान अज़कार करूंगी और इससे मेरी रूटीन ख़राब नहीं होगी। ये कल जो हमने पीरियड्स का टॉपिक पढ़ा उसकी वजह से।
इस टॉपिक पे तो जैसे आरिक आंटी ने कहा था कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत सारे मिली है, तो घर जाके फिर सुनना है। मगर एक लेसन जो मैं लेके जा रही हूँ कि अल्लाह, हम जैसे आपने कहा था कि बहुत सारी प्रोटेक्शन हमें दी है, यू डोंट फील लोनली, यू फील जैसे आपने निकाह के बाद आपके हस्बैंड मिलते हैं, मगर स्टिल आपको प्रोटेक्शन अल्लाह की तरफ से, जिसने जिसने आपको बाप दिया है, हस्बैंड दिया है, स्टिल अल्लाह आपसे इतना प्यार करते हैं इस लेसन के बाद।
अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत महसूस हुई है। जी, नेक्स्ट। वालेकुम अस्सलाम, ये तकरीब आ जाएगा।
आज का जो लेसन है वो बहुत इंफॉर्मेटिव था। इस इंसान लाइक पर्सनली मेरी कोई क्लोज फ्रेंड है, उनके साथ लाइक मसला हुआ था तलाक का, ना खुद एडवाइस है, आई डिडंट हैव नॉलेज, आई डिडंट नो एनीथिंग, लेकिन अब जो साथ जिस मिल गई है कि कितना लाइक लीनियंट है सब, और कितने हमें और हस्बैंड्स और कपल्स को चांसेस मिलते हैं, तो यू स्टिल गेट टू वर्क थिंग्स आउट, खुद जब आप लोगों के साथ होते हो, लाइक स्टेइंग इन द सेम हाउस एंड यू नो दैट ही इज इंटेंडिंग टू डिवोर्स यू, but you still have the chance to like work it out because you have that connection, and who can give you that chance but Allah? And it's so beautiful to see, so alhamdulillah.
Alhamdulillah.
As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum as-salam.
आज जो सवाल है सुना है निकाह के बारे में कि लड़की मुद्दता निकाह नहीं करा सकती, यहाँ पहले फिल्म और ड्रामा में देखा है कि लोग करते हैं, तो मैंने सोचा शायद हमें भी जायज़ है। मेरी आज सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि आज हमें पता चल गया कि नहीं जायज़।
सही, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। एक दो ऑनलाइन के कमेंट पढ़ते हैं. आई फेल्ट फ्रॉम टूडेज लेसन दैट मैरिज इज अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड एंड इस्लाम टीच अस पेशेंस फॉर ईच अदर एज अ कपल. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज इज नॉट अ गेम नीदर अ तमाशा. सच बात है. और हदीस में आता है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जो खेल में भी हो जाती हैं, यानी उनका हज़लुहा प्लेइंग में, खेल में, सीरियस नॉन सीरियस, वो क्या है? नंबर एक निकाह, नंबर दो तलाक, और नंबर तीन रुजू. आप फिल्म और ड्रामों में ये सुनते नहीं कि शौहर बीवी थे और एक दूसरे को फिल्म में तलाक दे दी है तो क्या है? अब अल्लाह को पता है उसकी क्या हकीकत है. अल्लाह ना करे कोई मर्द मजाक में कह दे जा तुझे तलाक देता हूँ, तो हो जाएगी जी, बिल्कुल हो जाएगी. इसलिए इन मौजूद पे कभी बात नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, ना इतनी शह दें ना शह लें. ठीक है. आई फेल्ट दैट अल्लाह सुब्हान अल्लाह इज़ टेलिंग अस दैट वी आर सो इम्पॉर्टेंट जेट वी लेट अदर्स पुट अस डाउन. बिल्कुल. तो अल्लाह ताला हम सब का दिल खोल दे और हम हकीकत में इससे बेहतरीन तरीके से फ़ायदा लें. कोई अगर आपको इसका मसला नहीं समझ आएगा ना, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है. जब किसी के सर पे पड़ती है उसको फिर भी नहीं समझ आती, फिर भी उसको पूछना ही पड़ता है. असल चीज़ जो आप लेके जाया करें ना कुरान की क्लास से, वो रूहानियत है, अल्लाह से कुर्ब मोहब्बत है. फिकी क्लासें, फिक का मौजू और होता है, कुरान की तफसीर का और होता है. ठीक. तो अगर आपको अभी 100 में से 10 चीज़ें नहीं समझ आई तो डोंट वरी, अभी इसके आगे दो टॉपिक और हैं जी. आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका कि नंबर, इसके तीन सिचुएशंस है, मैं तीनों बता देती हूँ, बल्कि अच्छा हुआ कि बात नहीं हुई थी, तब हो जाती है. कि जो मीनोपॉज में आ गई खवातीन जिनको पीरियड्स नहीं होते, ठीक है, इनका सवाल ये था. लेकिन इसमें दो और ऐड कर लीजिए, एक वो बच्ची जिसको भी पीरियड्स ही नहीं शुरू हुए उसको तलाक हो, और तीसरा वो जिसको इरेगुलर है, जो मेरा हाल आज के दौर में बहुत आम है, तो फिर उसके लिए 3 महीने एक साइलेंट टाइम है. ठीक है, चले ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं फिर. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व तुबु इलैक. रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन आमीन.
अत्तलाकु मर्रतान فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم